समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
खरना की शाम सुहानी हो, छठी मैया की कृपा बनी हो, दुख दर्द मिट जाए सारा, जीवन में बस खुशियों के निशानी हो। श्रोताओं, आज छठ महापर्व के दूसरा दिन है, जिसे खरना पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत। तो महापर्व छठ के खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हर दिन की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता।
हेलो जया, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छठ व्रतियों की भक्ति को प्रेरणादायक बताया।
मिस्टर मोदी सेड, ऑपरेशन सिंदूर हैज फिल्ड एवरी इंडियन विद प्राइड एंड देयर इज एंथुसियाज्म अमंग पीपल रिगार्डिंग GST बचत उत्सव।
प्रधानमंत्री ने आज 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, कहा 21वीं सदी भारत और आसियान की है।
वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रीचेस शेल्स टू अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर पैट्रिक हमीनी।
और आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी में चक्रवात मोन्था के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global levels. Today, we will talk about the Indian breed dogs stand guard. It's not the size of the dog in the fight, it is the size of the fight in the dog, said Mark Twain.
किसी ने कहा है कि अगर सबसे दयालु आत्माओं को सबसे लंबी उम्र का इनाम दिया जाए, तो कुत्ते हम सबसे ज्यादा जिंदा रहेंगे।
And I'm sure, Jaya, our listeners must have seen army dogs in metro while commuting. Have you seen how calm and disciplined they are? They walk so peacefully, no noise, only a brave walk, and they are on duty, safeguarding all of us.
जी हाँ, मेट्रो में दूसरे यात्री इन प्यारे नन्हे दोस्तों को दुलारने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग तो यह देखकर हैरान भी होते हैं कि ये प्यारे दोस्त कितनी खुशी और खामोशी से उसी मेट्रो में सफर कर रहे हैं।
Or maybe you might have seen them during parades like Wagha Border Parade, when they perfectly showcase skills by following commands given by the trainers. They respond joyfully when they are called by their names. We all know that.
बिल्कुल अनीता, कुत्तों को लंबे समय से वफादार साथी माना जाता रहा है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी भूमिका सिर्फ साथी होने से कहीं आगे तक फैली हुई है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने में सराहनीय प्रयास किए हैं।
आप में से बहुतों को याद होगा, करीब 5 वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान यानी डॉग्स की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। BSF और CRPF ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है.
एंड यर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इंडियन ब्रीड डॉग्स इन देयर कंटिंजेंट्स. दीज मिलिट्री वर्किंग डॉग्स इन इंडिया आर इंटीग्रल टू द सक्सेस ऑफ द फोर्सेज, पर्टिकुलरली इन चैलेंजिंग टेरेन्स एंड हाई रिस्क सिनेरियोज.
प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
Do you know that Mudhol hounds are believed to have been bred first by Raja Maloji Rao Ghorpade of the erstwhile kingdom of Mudhol in present-day Bagalkot? After he saw the qualities of the dogs that tribal communities of his territory kept.
जी, और कहा जाता है कि राजा ने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान किंग जॉर्ज पंचम को इन कुत्तों का एक जोड़ा भेंट किया था, जिसके बाद इस नस्ल का नाम मुधोल हाउंड पड़ा.
Yes, and the breed is known for its hunting and also guarding skills. Mudhol hounds are lanky and fast runners with excellent stamina and agility. They have a sharp vision and also a good sense of smell, which is really very important for dogs, right?
जी बिल्कुल. मुधोल हाउंड उत्तरी कर्नाटक के मूल निवासी शिकारी कुत्तों की एक नस्ल है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले विशिष्ट बल विशेष सुरक्षा समूह SPG में शामिल किया जा सकता है. मुधोल हाउंड, जिसे मराठा हाउंड, पश्मी हाउंड, काठोवार डॉग और कारवा हाउंड के नाम से भी जाना जाता है, भारत में इसे साइथाउंड एक प्रकार का कुत्ता का नस्ल है.
These dogs have athletic legs, an elongated skull, and a 270-degree vision, and also a sharp sense of smell, like we mentioned. They are also swift runners and come with great stamina. Hence, they are ideal for hunting, guarding, and also surveillance. Yeah.
जी, अब बात करते हैं रामपुर हाउंड्स की, जिन्हें रामपुर ग्रोहा हाउंड्स भी कहा जाता है. इसे लगभग 300 साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में रामपुर के नवाब ने अफगान हाउंड्स और अंग्रेजी ग्रे हाउंड्स के क्रॉसिंग के जरिए गति और ताकत बढ़ाने के लिए पाला था.
रामपुर हाउंड्स आर अ स्लीक एंड एथलेटिक साइट हाउंड ब्रीड. दे हैव अ वेरी वेल बिल्ट फ्रेम विद टॉल लॉन्ग लेग्स एंड अ नैरो टॉर्सो एंड अ डीप चेस्ट डिजाइन फॉर स्पीड एज वेल एज एंड्योरेंस. Rampur hounds are one of the fastest dogs capable of running at more than 40 meters per hour, helping them excel in coursing as well as hunting.
जी, और इस नस्ल की कुछ और खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो वे अजनबियों से अलग और संकोची रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति बेहद वफादार, आज्ञाकारी और समर्पित होते हैं, और अक्सर किसी एक मुख्य व्यक्ति के साथ मजबूत बंधन बना लेते हैं. वे बुद्धिमान होते हैं, खासकर शिकार और दौड़ने के कामों में, और एक बार सहज हो जाने पर फिर बहिर्मुखी और जिज्ञासु भी हो सकते हैं. रामपुर हाउंड स्वाभाविक रूप से डरपोक होते हैं, हालांकि वे सचेत करते समय जोर से भौंकते हैं और घुसपैठियों या अन्य कुत्तों के प्रति सुरक्षात्मक या यहां तक कि क्रूर भी हो सकते हैं, जिससे वे प्रभावी रक्षक कुत्ते बन जाते हैं.
डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए BSF का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में है. यहां उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है. इस सेंटर पर ट्रेनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं. भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स को फिर से लिखा गया है, ताकि उनके यूनिक स्ट्रेंथ्स को सामने लाया जा सके.
BSF's National Training Center for Dogs is located at Tekanpur, Gwalior. At this center, trainers are training the dogs more effectively with the help of technology as well as innovation. Mr. Modi further stated that at the CRPF's Dog Breeding and Training School in Bengaluru, Indian breeds such as mongrels, Mudhol hounds, Kombai and Pandikona are being trained.
भारतीय सेना की श्वान इकाइयां भारतीय सेना की विशिष्ट इकाइयां हैं, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाता है. ये इकाइयां अत्यधिक कुशल कुत्तों से बनी होती है, जिनमें प्रत्येक को उनकी विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर चुना जाता है और विशिष्ट भूमिकाएं निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. इन कुत्तों को उनके प्रशिक्षकों के साथ जोड़ा जाता है, जो मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं.
एंड ऑल्सो जया, की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी डॉग यूनिट्स इंक्लूड रिगरस ट्रेनिंग. डॉग्स अंडरगो रिगरस ट्रेनिंग एट द रीमाउंट एंड वेटरिनरी कोर्स सेंटर इन मेरठ, वेयर दे आर ट्रेन्ड इन वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज ट्रैकिंग, explosive detection and assaults. These dogs are deployed in various operations from counter-insurgency to anti-naxal operations in central India.
जी बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी बात किया कि भारतीय सेना की स्वान इकाइयां विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और खोज और बचाव तथा सुरक्षा से में बेजोड़ क्षमताएं प्रदान करती है। कुत्ते सदियों से सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे हैं और भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी भूमिका अपरिहार्य है।
The role of dogs in Indian armed forces spans several crucial areas including detection. Military dogs are trained to detect explosive, drugs and other contraband. Their acute sense of smell makes them far more effective than any human or machine in this regard, yeah.
जी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों या युद्ध अभियानों के दौरान सैन्य कुत्तों को लापता कर्मियों या लोगों का पता लगाने के लिए तैनात किया जाता है। दुर्गम इलाकों में नेविगेट करने और मलबे में फंसे लोगों को खोजने की उनकी क्षमता अद्वितीय है। सुरक्षा और गश्त, इन कुत्तों का इस्तेमाल अक्सर सैन्य प्रतिष्ठानों में उसकी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में गश्त किए जाने के लिए किया जाता है। उनकी उपस्थिति ही संभावित खतरों को रोक सकती हैं।
एंड इन कॉम्बैट सिचुएशंस मिलिट्री डॉग्स कैन बी यूज्ड टू इनकैपेसिटेट एनिमीज और प्रोटेक्ट सोल्जर्स फ्रॉम एम्बुशेस। मिस्टर मोदी रिकॉल्ड दैट अ डॉग नेम्ड रिया कॉट एवरीवन्स अटेंशन एट द ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हेल्ड इन लखनऊ लास्ट ईयर। He informed that Ria is a Mudhol hound trained by BSF. Ria had won the first prize, leaving behind several foreign breeds. Mr. Modi also expressed satisfaction that BSF has started the tradition of assigning Indian names to its dogs now instead of foreign names. The Prime Minister stated that our indigenous dogs have displayed amazing courage. An indigenous dog of CRPF detected 8 kilograms of explosive last year during a patrol in a Maoist affected area of Chhattisgarh.
श्रोताओं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुत्ते उन विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों का पता लगा सकते हैं जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी छूट जाते हैं, जिससे संभावित हताहतों को रोका जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध की स्थिति में सैन्य कुत्ते लापता व्यक्तियों का शीघ्र और कुशलतापूर्वक पता लगाकर उनकी जान बचाते हैं। सैन्य कुत्तों की उपस्थिति का सैनिकों और विरोधियों दोनों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। सैनिकों के लिए वे मनोबल बढ़ाते हैं और भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं, जबकि उनकी उपस्थिति दुश्मनों को डराकर उन्हें डराने में सक्षम होती है।
Absolutely, and in many situations, the deployment of a military dog can be equivalent to multiple soldiers, making them a force multiplier in operations. The importance of dogs in military operations is evident from their ability to enhance mission success, save lives, and provide security in some of the most challenging environments.
जी बिल्कुल, ये वफादार और साहसी जानवर विशेषता के साथ सेवा करते रहते हैं और अपने मानव समकक्षों के साथ सच्चे योद्धा के रूप में अपना स्थान अर्जित करते हैं।
And these dogs are not only soldiers in their own right, but also cherished members of the military family. Prime Minister Narendra Modi congratulated BSF and CRPF for their efforts in this direction.
BSF और CRPF ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।
सैन्य अभियानों में कुत्ते के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उनके योगदान सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। भारत में सैन्य कार्य कुत्तों का सेवा एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। वे कई महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा रहे हैं और अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचा चुके हैं।
एंड फाइनली, मनी कैन बाय योर फाइन डॉग, बट ओनली लव कैन मेक हिम वैग हिज टेल, बाय किंकी फ्रीडमैन।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
द प्रेस्टिजियस फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम अक्टूबर 31st टू नवंबर 27। दिस मार्क्स द रिटर्न ऑफ दिस आइकॉनिक इंटरनेशनल चेस इवेंट्स टू इंडिया आफ्टर 23 इयर्स। अ रिपोर्ट।
The competition will take place in the Resort Rio in North Goa, with 206 players from 82 countries participating. The World Cup will be played in a knockout format with accumulative prize money of $2 million. The winner of this World Cup will not only earn the title, but will also secure a spot in 2026 Candidates Tournament. which is the final qualification for the World Chess Championship. This makes the World Cup a crucial step for players aspiring to reach the pinnacle of chess. This event not only marks the return of World Cup to India, but also showcases the rising prominence of Indian chess. The tournament is being held in Goa, and the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, launched the FIDE Chess World Cup 2025 logo and anthem during a special event. He emphasized that,
"Today we are launching a dream that belongs to every Goan and every Indian who believes in the power of intellect and discipline. The last time we hosted this historic event in 2002, when our own legend Vishwanath Anand lifted the World Cup trophy and made country proud. And now in 2025, this great event comes to Goa. It is a honor and a moment of immense and pride for our state and our nation."
The event will see participation from some of the most renowned chess players in the world. The list includes stars such as Gukesh T, Arjun Irigasi, Pragnananda R, Anish Giri, Wesley So, Vincent Kemer, Hans Niemann, and many more. One of the special attractions will be Faustino Oro, a 12-year-old chess prodigy from Argentina, who will be the youngest participant in the history of FIDE Chess World Cup. Divya Deshmukh, an emerging Indian chess player, has received a wildcard entry to compete in the open section. The event is a testament to country's increasing stature in the global chess game. Goa's rich culture, warm climate and vibrant atmosphere will provide a perfect setting for players and visitors alike. Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Padji.
And from Goa, we go over to the northeast, where a celebration of faith, heritage and humanity, and there is a divine glow at the Mata Bari temple. Let's listen to this very interesting report.
Built in 1501 AD by Maharaja Dhannamanikya following a divine vision, the goddess here is worshipped in the form of a 16-year-old Kumari Kali. Matabari is revered not only in Tripura but across the entire northeastern region as a holy pilgrimage site. 3-day-long Mela starting on the night of Diwali ended with overwhelming gathering of devotees who believe that goddess fulfills their heartfelt wishes. Chief priest Chandan Chakraborty said that the temple was beautifully decorated this year. Since dawn, long queues of devotees were formed and the temple premises were filled with fragrance of incense sticks, the glow of lamps and the chanting of hymns. Around the Kalyan Sagar Lake, a grand Diwali fair has been organized. While the Dhannamanikya Mukta Mancha hosts vibrant cultural programs, the local administration has also ensured tight security arrangements. The Diwali festivities at Matabari, where goddess Tripura Sundari is worshipped as Kumari Kalika, embody the spirit of faith, heritage and humanity. Even though the rituals follow age-old traditions, the fair reflects the unity of society beyond barriers of caste, language or religion. The rhythmic sound of drums and temple bells, the glow of lamps and the joy of devotees' faces turn Matabari into a living image of devotion and togetherness. As reflections of light dance upon the waters of Kalyan Sagar, one sentiment echoes among the devotees: "We will return again to this sacred meeting place of faith and light. May the radiance of Diwali dispel our darkness." Parikrama, Aditya Datta, Akashvani, Agartala.
आस्था का चार दिन का महापर्व छठ कल नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। पर्व के दूसरे दिन यानी कि आज छठ व्रती खरना की रस्म करेंगी। यह पवित्र पर्व भगवान भास्कर को समर्पित है, जो प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। सुनते हैं हमारी झारखंड संवाददाता की रिपोर्ट।
The devotees will today begin a 36-hour-long fast without water after consuming the sacred Kharna Prasad after sunset. Tomorrow, Arghya will be given to the setting sun at Chhat Ghats located on various river or water bodies. On Tuesday, the devotees will offer Arghya to the rising sun, marking the conclusion of the 4-day-long Chhat festival. The famous Surya Temple in Ranchi has become lively ahead of the Chhat festival as Chhat Vratris offer their pujas on the ghats of Swarnarekha River here and worship the sun god. There is heavy rush of people buying fruits, earthen pots and other items used in Chhat puja. Meanwhile, the Disaster Management Department has issued several instructions and deployed NDRF people to ensure safety during the Holi festival. Shilpi, Akashwani News, Ranchi.
Another अब बात खेल खबरों की, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने हाल ही में संपन्न यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सुपर शतरंज टीम और महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख ने महिला प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप जीते। भारत के निहाल सरीन ने भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On 26th October 1947, Jammu and Kashmir acceded to the Union of India after Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession, which was accepted by India's last Governor-General, Lord Mountbatten, on 27th October. Early in the morning on 27th October, the Indian Army's 1st Sikh Battalion was airdropped in Srinagar, where they resisted the tribal invasion supported by Pakistan.
As the tribal invaders captured Uri and Baramulla with minimal resistance from the Maharaja's forces, the fall of Srinagar looked imminent. On 24th October, Maharaja Hari Singh appealed to India for military assistance to stop the aggression. The request was considered on 25th October 1947 in a meeting of India's Defence Committee headed by Lord Mountbatten. The committee comprised Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Baldev Singh, Gopalaswamy Iyengar, and the British commanders-in-chief of the Army, the Air Force and the Navy. The committee concluded that the most immediate necessity was to rush arms and ammunition already requested by the Kashmir government.
The Defence Committee sent V.P. Menon, Secretary of the Ministry of the States, to Srinagar to make an on-the-spot study the same day. He returned to New Delhi the next day with his impressions and suggested sending troops to Kashmir, pointing out the supreme necessity to save Kashmir from raiders. Menon was then flown to Jammu to advise the Maharaja about the government's view. And that's when the Maharaja finally signed the Instrument of Accession on 26th October. The day is celebrated as Accession Day.
26th of October is the birth anniversary of the legendary freedom fighter and eminent journalist Ganesh Shankar Vidyarthi. He was born on the 26th of October 1890 at Attar Suya in Prayagraj district of Uttar Pradesh. After finishing school, Vidyarthi enrolled at Kayasth Pathshala College but was unable to graduate since he had to support his family of humble means. He went on to become a clerk, but his real passion lay in journalism. Later on, he began writing for Karma Yogi, the publication founded by Pandit Sundarlal, a leader of the revolutionary Ghadar movement. At the age of 23, Vidyarthi, however, quit the publication and moved to Kanpur, where he started his own Hindi weekly, Pratap, in 1920.
The same year, he was sentenced to 2 years rigorous imprisonment for championing the cause of peasants of Raibareli. He was released in 1922, but was immediately sent to jail again for allegedly delivering a seditious speech at Fatehgarh. He wrote extensively not only about the freedom struggle, but also about social inequality in the society.
Vidyarthi also used journalism to develop critical thinking among the masses. He was a champion of communal harmony and played a leading role in forming an organization called Hindustani Biradari. It organized programs on communal harmony and joint celebrations of various festivals. Ganesh Shankar Vidyarthi was a member of the Indian National Congress and an ardent follower of Mahatma Gandhi. Over time, he became an influential leader during the non-cooperation movement. He took a leading role in the Home Rule movement of 1917-18 and led the first strike of textile workers in Kanpur.
Immediately after the execution of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, a riot broke out in Kanpur. Called the Lion of Kanpur, Vidyarthi took upon himself to calm communal passion running high and stop rioting. Unfortunately, he was killed in the riots on 25th March 1931, 2 days after the hanging of the three revolutionaries. Paying tribute to Vidyarthi, President Ramnath Kovind said he sacrificed his life to douse the flames of hatred during communal violence.
In pursuance of his dream of a strong and united India, he sacrificed his life for peace and non-violence like a true disciple of Mahatma Gandhi.
Mourning the loss of Vidyarthi, who was merely 40 years of age at the time of his death, Mahatma Gandhi wrote in The Young India, "The death of Vidyarthi was one to be envied by all."
In memory of the celebrated journalist, the Government of India instituted the prestigious Ganesh Shankar Vidyarthi Award to recognize outstanding contribution in the field of Hindi journalism.
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और सिद्धहस्त लेखक मन्मथनाथ गुप्त की। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक तथा गल्प साहित्य की रचना की। ये मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और जेल गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी रहे और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1925 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आज ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर की भी पुण्यतिथि है। उन्हें थोड़ी ही अवधि में राग का संपूर्ण आकर्षक चित्र प्रस्तुत करने की महारत हासिल थी। पलुस्कर जी शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त महान भजन गायक भी थे। उन्हें फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी जाना जाता है। आज ही पुण्यतिथि है कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे की। उन्होंने कन्नड़ काव्य को सम्मानीय ऊंचाई दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दत्तात्रेय जी के विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, बोर्न ऑन दिस डे 1937, द इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड ओकेशनल सिंगर। He is popularly known as Bala Saheb in the music and film industry. He received Film Fair Marathi Lifetime Achievement Award for his contribution to Marathi cinema. We have a snippet from one of his compositions. Hridaynath debuted in his music career in 1955 with the Marathi film Akash Ganga. Since then, he has composed for various Marathi films. He has composed songs in Marathi as well as Hindi. His songs often have complex meters and require singers of great range and depth for enjoyable renditions. He has also composed music for Doordarshan musical drama Phoolwanti. Today is the birthday of the Indian playback singer. Notable for his work in Bollywood, known for his sweet and resonant voice, we are talking about Shabbir Kumar, born on this day in 1954. He sang for the actors like Dharmendra, Amitabh Bachchan, Jitendra, Rishi Kapoor, Mithun, Sunny Deol and many more. A snippet from one of his songs.
Tumne diya waazilon mein aa gaya.
श्रोताओं, आज भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन का जन्मदिन है। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, उनमें से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दो फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार भी शामिल है। 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड नमस्कार।